आखिरी टॉपिक शुरू करेंगे इस बुक का। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफीक से हमने इसके तीन बड़े हिस्से पूरे किए। अब फसल सोयम है, बाजार में औरत बहसियत मुख्तसिबा, क्या औरतें बाजार में, अब क्या इसके टेक्स्ट हैं अभी पढ़ें। अब ये नहीं कि बाजार में जाके लोगों पर तनकीद शुरू कर दें, क्या औरत एहतसाब कर सकती है कि अगर सरेआम बाजार में बाहर कोई चीज़ बुरी देखे तो उसको टोक सकती है। ये भी तो आज हमारा इशू है ना, कहीं बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं तो कहीं बाज़ारों में फैशन हो रहा है तो कहीं बेपर्दगी है तो कहीं चूड़ियाँ पहना रहा है कोई मर्द किसी को, तो हम ये देखें तब क्या करें। क्या ये अहम टॉपिक है? बहुत अहम टॉपिक है। आइए पढ़ते हैं तमहीद के अंदर कुछ चीज़ें। एहतसाब के मुतल्लिक ख़वातीन की ज़िम्मेदारी और इनके आम लोगों इज़्ज़ा व अकारिब उलमा व तुलबा और अहले इक्तदार पर एहतसाब के दलाइल और वाक़ियात की तफसील जानने के बाद ये सवाल पैदा होता है, क्या किसी खातून की बहसियत मुख्तसिबा बाज़ार में तकरारी जायज़ और दुरुस्त है? यानी औरत को कहीं ये नॉमिनेट किया जा सकता है कि वो लोगों की बुराइयाँ देखे और उनको रोके? और दूसरी तरफ उलमाए उम्मत ने इस बात का वाज़ अंदाज़ में जवाब दिया कि ऐसा करना शरण दुरुस्त नहीं। अलबत्त बाज़ लोगों ने इस बारे में कुछ शुबहात उठाए हैं। अल्लाह की तौफीक से हम इसमें दो टॉपिक के अंदर बात करेंगे। पहला टॉपिक है बाज़ार में बहसियत मुख्तसिबा, औरत की तकरारी की ममानियत के दलाइल। यानी औरत को ये फील्ड नहीं दिया जा सकता कि आप बाज़ार में बैठ जाएं और लोगों का एहतसाब करें, क्योंकि औरत औरत है, ये घर की चीज़ है। इसकी क्या दलील है, क्या हिकमत है, अभी हम इसके दलाइल पढ़ते हैं। और दूसरा ये कि बाज़ शुबहात और उनकी हकीकत। पता क्या चला कि औरत की हैसियत बाज़ार में नहीं है। आइए देखते हैं इसकी पहला हिस्सा क्या है। बाज़ार में बहसियत मुख्तसिबा, औरत की तकरारी की ममानियत के दलाइल। किसी औरत के बाज़ार में बहसियत मुख्तसिबा मुतय्यन करने की ममानियत के मुतअद्दद दलाइल हैं। शेख अहमद बिन सईद मजीलदी ने इस सिलसिले में तहरीर किया। मुख्तसिब की तकरारी की शरायत में से एक ये है कि वो मुज़क्कर हो, क्योंकि इस शर्त के असबाब दवाई लातदाद और अनगिनत हैं। इस बारे में तौफीक इलाही से कुछ दलाइल छः उनवान की ज़ीरत में पेश करते हैं। इन छः मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं, कह लें कि एक टॉपिक है फिर उसके अंदर छः चीज़ें हैं। पहला टॉपिक है मर्दों की औरतों पर सरपरस्ती, यानी अल्लाह ने कह दिया रिजाल कवामून अला निसा। दूसरा, अपने बाज़ मामलात में औरतों का कुल्ली इख्तियार ना रखना, यानी औरत कुछ हद तक अपने मामलात में बाख्तियार है और कुछ हद तक नहीं है। तीसरा, औरत के हाथ बागदौड़ देने वाली कौम की फलाह से महरूमी, और औरतों का असली ठिकाना इनका घर है। बाज़ार में तकाज़ाए एहतसाब का औरत की तबीयत के मुनाफी होना, आम मैदानों में औरतों के निकलने के नतायज, यानी मोर लाइकली इस टॉपिक में हम औरतों के घर से बाहर निकलने की लिमिटेशंस और वहाँ जाके करने के कामों की हदबंदी देखेंगे। तो पहला वाक्या देखिएगा किसके अंदर हम पढ़ने लगे, बाज़ार में औरत मुख्तसिबा नहीं बन सकती। तो उसमें पहली चीज़ क्या देखेंगे, मर्दों की औरतों पर सरपरस्ती। पहला टॉपिक जो है वो क्या है, अल्लाह ताला ने मर्दों को औरतों के जुमला मामलात का ज़िम्मेदार बनाया और वह इनकी मुआशी और माशरती ज़रूरियात को पूरा करने के लिए सही और कोशिश करने के पाबंद है। इस बारे में इरशाद रब्बानी है और रिजाल क़वामून अला निसाई बिमा फद्दलल्लाहु बादहुम अला बाद व बिमा अन्फ़क़ू मिन अम्वालिहिम। मर्द औरतों की ज़िंदगी के जुमला मामलात का बंदोबस्त करने वाले हैं, इसलिए कि अल्लाह ताला ने एक को दूसरे पर ख़ास ख़ास बातों पर फजीलत दी है। नीज़ इसलिए कि मर्द अपना माल औरतों पर खर्च करते हैं। इमाम बगवी ने इस आयत की तफसीर में तहरीर किया है, यानी इनको अदब सिखलाने के लिए मुकर्रर किया गया। कवाम और कय्यम का मानी एक ही है, अलबत्ता लफ्ज़ कवाम ज़्यादा बली है और इससे मुराद जुमला मामलात सर अंजाम देने वाला, इनकी तदबीर करने वाला और अदब सिखाने वाला है। अलामा सयूती ने तहरीर किया, कवाम से मुराद किसी चीज़ की देखभाल करने वाला, इसकी हिफाजत करने वाला। और इस आयत करीमा से ये इस्तदलाल किया गया कि औरत इमामत उज़्मा की तरह मनसब कुज़ा को भी नहीं संभाल सकती, यानी औरत काजी नहीं बन सकती, क्योंकि अल्लाह ताला ने मर्दों को इनके जुमला मामला सर अंजाम देने का ज़िम्मेदार बनाया, इसलिए ये जायज़ नहीं कि वो मर्दों के मामलात सर अंजाम दें। इस तरह औरत को बाज़ार में मनसब इख्तसाब पर फायज करना भी दुरुस्त नहीं, क्योंकि इसमें मर्दों औरतों और तमाम कायनात के खालिक की तकसीम कार को यकसर उलट देना है, और बेहतरीन तकसीम कार तो अल्लाह खालिक ही की तकसीम कार है। कुरान पाक में आता है सुन अल्लाह हल्लज़ी अतकना कुल्ल शैइन इन्नहु खबीरुम बिमा तफ़लून। अल्लाह की ये कारीगरी है, सूरत नमल की आयत है, आयत नंबर 88, अल्लाह ताला की कारीगरी जिसने हर चीज़ को मजबूत और मोहकम बनाया है, बिलाशुबा वो तुम्हारे कामों की पूरी तरह खबर रखता है। यानी अल्लाह को पता है कि मर्द क्या कर सकता है और औरत क्या कर सकती है। कोई ये ख्याल ना करे कि इस आयत करीमा में तो सिर्फ खामंद की बीवी पर सरबराही और सरपरस्ती का जिक्र है। हकीकत यह है कि इसमें जिन्स ज़कूर यानी मर्द की औरतों की सिन्फ पर निगहबानी और सरपरस्ती का जिक्र है। इस बारे में मशहूर मुफसिर हैं इब्ने आशूर, वो तहरीर करते हैं, अर रिजाल से मुराद जिन्स ज़कूर है और अनिसा से मुराद औरतों की सिन्फ है। रिजाल से आयत करीमा में मुराद शोहर नहीं, क्योंकि ये लफ्ज़ इस मानी में इस्तेमाल नहीं किया जाता। क्या पता चली अल्लाह ने क्यों औरत को बाजारों में जाकर एहतसाब करने की इजाज़त नहीं दी, क्योंकि औरत का ये फील्ड नहीं है। कुछ काम औरतों को सजते हैं, कुछ मर्दों को सजते हैं। आप कह लें औरतों को ये काम सजता नहीं है। दूसरी बात, अपने बास मामलात में औरतों का कुल्ली इख्तियार न रखना। शरीयत इस्लामिया में ये बात वाज़ह की गई है कि ख़वातीन अपने बास मामलात में मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार नहीं। ऐसे ही मामलात में से एक ये है कि कोई मुसलमान औरत अपने निकाह का फैसला तन्हा करने की मजाज नहीं। इस फैसले में इसके सरपरस्त की शिरकत और मुवाफ़कत ज़रूरी है, इसके बगैर निकाह ना होगा। इसी तरह कोई औरत किसी दूसरी औरत के निकाह का फैसला नहीं कर सकती। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कई अहादीस में वाज़ह तौर पर बयान की। उसमें से तीन अहादीस यहाँ बयान की जा रही हैं। पहली रिवायत अबू दाऊद, तिरमिज़ी, इब्ने माजा, दारमी, दारकुतनी और हाकिम जो सारे आइमा कराम थे, इन्होंने अबू मूसा अलअशरी से रिवायत नकल की। अन्नन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला ला निकाह इल्ला बिवलीय। यकीनन आपने फरमाया कि वली के बगैर निकाह जायज़ नहीं। यहाँ उलमा कहते हैं ला निकाह से बात शुरू हुई है, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह ना, तो ला निकाह। अरबी का असूल है कि जब नहीं का लफ्ज़ शुरू में लग जाए तो शिद्दत पैदा होती है। औरत किसी सूरत में वली के बगैर निकाह नहीं कर सकती। सवाल पैदा होता है कर लिया, अब क्या करें? अब बाप नहीं माना, तलाक दिला दे। दूसरी बात है, बाप अब मान गया तो फिर दोबारा उधर ही शादी कराए। ये सिंपल सा रूल है, याद रखें। दूसरी बात, करीब के वली के होते हुए दूर का शख्स वली नहीं बन सकता। यानी बाप नहीं मान रहा तो औरत भाई को वली बना ले, ये नहीं हो सकता। मामू को साथ लगा ले, चचा को लगा ले, नहीं लगा सकता। ये अल्लाह ताला की तरफ से पाबंदी है और ये असल में औरत के हक की बात है। औरत को इसमें सिक्योर किया जा रहा है, ठीक है। दूसरी हदीस देखिए, आयमा अहमद, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, इब्ने माजा, दारमी, दारकुतनी और हाकिम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत नकल की है। बिला शक व शुबा रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, जिस किसी औरत का निकाह इसके वली की इजाज़त के बगैर किया गया, बस वो निकाह बातिल है। देखिए इससे ज़्यादा क्लैरिटी क्या है, कर दिया है फिर भी बातिल है। बस वो निकाह बातिल है, बस वो निकाह बातिल है, तीन बार आपने ये बात कही। और इमाम खत्ताबी इस शरा की हदीस यानी इसकी तफसीर में क्या कहते हैं, आपका फरमान अय्युमा इमरातन बशमूल और इस्तेआब के लिए है, यानी सारी औरतें, और इससे सब खवातीन पर विलायत सरपरस्ती साबित होती है। इनमें कुंवारी, ये देखिए अगला सवाल, कुंवारी, बेवा, मुअज्जज और गैर मुअज्जज सब किस्म की औरतें शामिल हैं। नीज़ इसमें यह बात भी है कि औरत खुद अपने मुतल्लिक तनहा फैसला करने की मजाज नहीं है। अब एक अलग सूरत है, किसी का है ही कोई नहीं, कोई बेवा है, अब शोहर तो फौत हो ही गए, बाप भी नहीं, बेटा भी नहीं, भाई भी नहीं, कोई दूर दूर का है, अब उसको कोई फैसला करना है। बाहर के मुल्कों में ऐसा होता है, बहुत सारे ऐसे, बहुत सारे हैं, बल्कि शादी करके यहाँ से ले गए अपने मुल्कों में, वहाँ जाके छोड़ दिया, अब उनका ना कोई बाप ना भाई है। पाकिस्तान में है तो उनसे रब्ता तो होगा, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसे हालात होते हैं कोई भी नहीं होता, तो फिर वहाँ का कोई दीनी हुक्मरान, कोई वहाँ का मुस्लिम हुक्मरान, कोई लीडर, कोई वली हालात और वाक़यात को देखकर फिर उसका फ़ैसला कराएगा। ये भी हदीस में हमें मिलता है। तो औरत फैसला अकेला नहीं करेगी। फिर इमाम इब्ने माजा और इमाम दारकुतनी ने हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत नकल की है, क्या बयान करते हैं, ला तुज़व्विजुल मरअतुल अमरअता वला तुज़व्विजुल मरअतु नफ्सहा फ़इन्ना ज़ानियता हियल्लती तुज़व्विजु नफ्सहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई औरत किसी औरत की शादी का फ़ैसला ना करे और ना ही कोई औरत अपनी शादी का फ़ैसला खुद करे। बिला शक व शुबा बदकार औरत ही अपनी शादी का फ़ैसला खुद करती है। आप बताइए, आज तो कहते हैं जाओ ढूंढ लो, तो बहरहाल ऐसे बहुत सारे अंदर किस्से हैं, अल्लाह सब के ऊपर अपना रहम करे। इसके अलावा बाज़ हज़रात सहाबा से ये साबित है कि उन्होंने अपने निकाह का फ़ैसला खुद करने वाली औरत को फाहिशा, जानिया और फाजिरा, फाजिरा आप समझते हैं फजूर से गुनाहगार कहा है। ज़ेल में इसके मुतल्लिक तीन अक़वाल हैं। पहला कौल उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, औरत अपनी शादी खुद ना करे, बिला शक व शुबा फाहिशा औरत ही अपनी शादी खुद करती है। दूसरा हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया, इन्नल्लती तुज़व्विजु नफ्सहा हियल फाजिरतु, यकीनन जो औरत अपनी शादी खुद करती है वो फाजिरा है। कुन्ना नतहद्दसल्लती तुनकिहु नफ्सहा हियज जानिया, हम कहा करते थे कि खुद अपना निकाह करने वाली जानिया है। अस्तग़फिरुल्लाह। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, यह अगली रिवायत है, अल बगायल्लाई यतज़व्वजन बिग़ैरी वलीयिन, फाहिशा औरतें वो हैं जो वली के बगैर शादी करती हैं। इसके बाद क्या दिल में आता है ही कोई नहीं सूरत, जो रहते हैं इस तरह उनके बच्चे भी जायज़ नहीं है। देखिए कि ये इस्लाम की हद है, टूटती है तो उसके ऊपर इंसान को फिर अल्लाह ताला की पकड़ का अंदेशा होना चाहिए। जब सूरत हाल ये है कि इस्लामी शरीयत में औरत खुद अपना निकाह करने का कुली इख्तियार नहीं रखती, तो ये कैसे मुमकिन है कि बाज़ारों में मर्दों और औरतों पर एहतसाब का मामला किसी खातून के सपुर्द कर दिया जाए, यानी औरत डिसीजन मेकर बन जाए किसी के बारे में, ये नहीं जायज़। रब्बे काबा की कसम, ऐसा करना इस मिस्कीन औरत पर बहुत बड़ा जुल्म होगा, और इन पर जुल्म भी है जिनके एहतसाब की गरज से खातून का तकर्रुर किया गया, यानी हो सकता है औरत फैसला ही ठीक ना करे तो जिनका फैसला किया उन पर भी ये ज्यादती होगी। तीसरी दलील है औरत के हाथ में बाग दौड़ देने वालों की महरूमी फलाह। हमारे सच्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की पेशगोई फरमाई कि औरत को अपने मामलात सौंपने वाली कौम फलाह से महरूम हो जाती है। इमाम बुखारी ने हज़रत अबू बकरा से रिवायत नकल की, उन्होंने बयान फरमाया, जब रसूलुल्लाह को ख़बर पहुंची कि अहले फ़ारस ने किसरा की बेटी को अपना हुक्मरान बनाया है, तो आपने फरमाया, औरत को अपना मामला सौंपने वाली कौम हरगिज़ फलाह ना पाएगी। देखिए ये कितना क्लियर कट हुक्म है। हमारे ही मुल्कों को ये ऑनर भी हासिल है कि यहाँ ये जायज़ है। जिनके नक्शे कदम पे हम चलना चाहते हैं वो औरत को इतना बोझ नहीं डालते कि वो सदर बन जाए। आप देखिए हमारे मुल्कों में ये रिवायत भी गुजर चुकी, कौम के मामला डूब जाते हैं। आपने फरमाया कि एक औरत जब भी किसी जगह पे उसको मामला दिए जाएंगे तो वो फला नहीं पाएगी कौम। खवातीन को बाज़ारों में मर्दों और औरतों के एहतसाब के लिए मुकर्रर करना भी लोगों के मामला औरतों को सौंपना है, और ऐसे लोगों का मुकद्दर कामयाबी और कामरानी से महरूम होना और बदबख्ती और बदनसीबी को पाना है। अल्लाह ताला हमें ऐसे बदनसीबों में शामिल ना करे। बात वाज़े। फिर उसके बाद चौथी बात बड़ी अहम है, औरत का असली ठिकाना इसका घर है। मर्दों के मुकाबले में औरतें तबई तौर पर नाजुक और कमज़ोर हैं। रहमान और रहीम रब ने औरत पर शफकत और इनायत फरमाते हुए इनकी सई और कोशिश का मैदान इनके घरों को बनाया और एक आम कायदा और जाब्ता बयान फरमा दिया कि औरतों का असली मुस्तकर और ठिकाना इनके घर है। इरशाद रब्बानी है, वक़र नफ़ी बुयूतिकुन वला तबर्रुज न तबर्रुजल जाहिलियतिलूला, सूरत अलनकबूत की आयत है। और औरतों अपने घरों में करार से रहो और दौरे जाहिलियत की तरह बनाओ सिंघार ना करो। दौरे जाहिलियत का बनाओ सिंघार क्या होता था कि औरतें बेपर्द बाहर निकल आती थी, उससे मना किया गया। सूरह अहज़ाब की आयत 33 है, ये बहुत क्लियर है हुक्म है। हाफिज़ इब्ने जौज़ी ने आयत करीमा की तफसीर में लिखा कि मुफस्सरीन ने बयान किया कि आयत का मानी यह है कि इन्हें अपने घरों में करार पकड़ने और टिके रहने का हुक्म दिया गया है और ये कि वो बाहर ना निकलें। इमाम अबू बकर जस्सास ने तहरीर किया, ये आयत इस बात पर दलालत को ना है कि औरतों को घरों में टिके रहने का हुक्म दिया गया है और बाहर निकलने से रोका गया है। इल्ज़मना बुयूतकुन्ना फला तहरुजना लिगैरिल हाजती, हम सब इसको ज़रा दोहराएं, पढ़िएगा, इल्ज़मना बुयूतकुन्ना फला तहरुजना लिगैरिल हाजा, अपने घरों से चिमटी रहो, बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलो। कोई ये ना समझे कि यह हुक्म सिर्फ अज़वाज मुतहरात ही के लिए, अगर चाहे तो करीमा में खिताब इन्हीं के लिए है, लेकिन ये हुक्म सब मुसलमान औरतों के लिए है। कई मुफस्सरीन कराम इस बात को वजाहत से बयान करते हैं। मिसाल के तौर पर इमाम अबू बकर जस्सास कहते हैं, नबी करीम की बीवियों की हिफाजत की खातिर अल्लाह ताला ने इन्हें इन आदाब की तलकीन की है, लेकिन इनकी पाबंदी दीगर मुसलमान खवातीन पर भी है। अलामा कुर्तुबी इस सिलसिले में लिखते हैं, इस आयत का मानी घरों में चिमटे रहना है, अगरचे खिताब तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को है, लेकिन इसके मानी में इनके अलावा दीगर औरतें भी दाखिल हैं। इसके अलावा इस हुक्म से दूसरी औरतों को मुस्तस्ना करने के लिए कोई दलील नहीं, बल्कि शरीयत तो औरतों को अपने घरों से चिमटे रहने से भरी पड़ी है। ताजुब इन लोगों की अक्ल दानिश पर जो घरों में टिके रहने का हुक्म उम्महातुल मोमिनीन के लिए मखसूस करते हैं, जो कि कुरान करीम के वाज़े बयान के मुताबिक पाक बास हैं, और दीगर औरतों के इस हुक्म से मुस्तस्ना करार देते हैं। क्या दीगर औरतें अज़वाज मुतहरात से ज़्यादा पाक बास हैं? सब मर्दो ज़न کہ خالق رب تعالیٰ کی قسم ہماری اور ان کی عورتوں کے اس حکم کی پابندی کی ضرورت پاک دینت اور بلند سیرت امہات المومنین سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ گھروں کا عورتوں کے لیے اصل ٹھکانہ ہونے پر یہ بات بھی دلالت کنہ ہے کہ مردوں پر 5 نمازیں باجماعت ادا کرنے، خطبہ جمعہ سننے اور نماز جمعہ ادا کرنے کی خاطر مسجد میں آنا فرض ہے، لیکن عورتیں اس حکم سے مستثنی کیا ایگزیمپٹیڈ، یعنی ان کو رخصت ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ آپ نے واضح انداز میں بیان فرمایا کہ عورت کی گھر میں نماز مسجد میں اس کی باجماعت نماز سے اعلیٰ و افضل ہے۔ عورتوں کا اصل ٹھکانہ گھر ہونے کی دلیل ایک اور بات میں بھی ہے کہ مسلمان عورت گھر سے نکلنے کی صورت میں کچھ شرعی آداب کی پاسداری کی پابند ہے، اور ان میں سے 7 یہ ہیں، یعنی آپ کی عورت نکلے گی نہیں، نکلے گی، پر آداب یا شرائط کیا ہیں؟ نمبر 1، بلا ضرورت نہ نکلے۔ اب ضرورت خود بنا لی جائے تو اور بات ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ باہر جانا غلط بات ہے، آپ اس کو مینٹین کریں، مینیج کیجئے۔ جب ایک چکر میں 6 کام ہو سکتے ہیں تو اس کے لیے 6 چکر نکلنے کی ضرورت نہیں۔ دوسری بات ہے سرپرست کی اجازت کے بغیر نہ نکلے۔ تیسری بات، بلا حجاب نہ نکلے، خوشبو استعمال کر کے نہ نکلے، اپنی زینت آواز سے ظاہر نہ کرے، مردوں سے اختلاط نہ کرے، اور محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ اب آپ دیکھیں یہ 7 شرائط پوری کر کے جو نکلے گی وہ پھر مناسب انداز سے نکلے گی۔ جب صورتحال یہ ہے کہ اسلام میں عورتوں کو گھر قرار پکڑنے کا حکم دیا گیا ہے، نماز باجماعت و جمعہ کے لیے مسجد میں حاضری سے مستثنی قرار دیا، گھر سے نکلتے وقت کئی شرعی آداب کی پاسداری کا پابند کیا، تو کیا ان سب کچھ کرنے کے بعد یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ مسلمان خاتون کو احتساب کے نام پر یا کسی اور نام سے گھنٹوں بازاروں میں اچھے برے لوگوں سے نمٹنے کے لیے مقرر کیا جائے؟ رب کعبہ کی قسم، اس بات کے اسلام میں کوئی میل نہیں ہے۔ یعنی عورت جا کے مقدمے لڑے، فیصلے کرے کرائے، تو یہ چیز نہیں۔ تو اسے اگر آپ دیکھیں تو در بردہ پھر عورت کا وکالت کرنا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو مجرموں سے سامنا پڑتا ہے نا۔ پھر 5ویں جو سیکنڈ لاسٹ بات ہے وہ کیا ہے کہ بازار میں تقاضائے احتساب کا طبیعت نسواں کے منافی ہونا، یعنی عورت اپنی طبیعت کے اعتبار سے یہ جھگڑے نپٹانا، فیصلے کرنا پسند نہیں کرتی۔ مختصف لوگوں کو ان کی خواہشات کے برعکس ایسی باتیں کرنے کا حکم دیتا ہے جن کو وہ پسند نہیں کرتے۔ ایسی ہے نا، کوئی سگریٹ پی رہا ہے تو آپ اس کو کہیں گے سگریٹ نہ پیو، تو اس کو اچھا تو نہیں لگے گا نا، یہ بات ہے۔ اور ایسی باتوں سے منع کرتا ہے جس کے وہ شوقین اور دل دادا ہوتے ہیں، اور لوگوں کو ان کی خواہشات کے برعکس چلانے کی کوشش کرنے والے کم ہی لوگوں کے شرور و فتن سے محفوظ رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ احتساب میں حقیقی مارکہ محتسب اور اوباش اور بدگماش قسم کے لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ وکیل یا جج کے پیشے کے ساتھ عموماً کرمنلز بھی تو سامنے آتے ہیں نا، بھلے لوگ بھی غلطی کرتے ہیں لیکن ان کے لیے اشارہ یا معمولی تنبیہ ہی کافی ہوتی ہے، لیکن بد تینت، آوارہ اور برے لوگوں کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے محتسب کو شدید محنت اور جد و جہد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس غرض کے لیے اس کا باروب ہونا ضروری ہے، اسی لیے علماء حسبہ نے محتسب کے لیے ضروری قرار دیا ہے کہ وہ روب اور دبدبے والا ہو۔ مثال کے طور پر امام ماوردی نے اس بارے میں تحریر کیا ہے، والی حسبہ کی شرائط میں سے ہے کہ وہ آزاد، عادل، صاحب الرائے اور دین میں قوت اور سختی والا ہو، اور منکرات ظاہرہ سے باخبر ہو۔ بات واضح سمپل ہے کہ جس نے بھی دوسروں کا احتساب کرنا ہے اس کے اندر یہ خوبیاں لازم ہیں۔ کیا یہ عقل مندی کی بات ہے کہ صنف نازک سے ایسی قوت و سختی کے اظہار کا مطالبہ یا توقع کی جائے؟ کیا یہ مناسب ہے کہ مسلمان خاتون کو اچھے اوباش اور بدگماش لوگوں سے سارا دن جھگڑنے، تو تکار کرنے، بلکہ بسا اوقات ہاتھا پائی یعنی ہاتھ چلانے کے لیے بازاروں میں متعین کیا جائے؟ عرش والے رب کی قسم، اس بات کی اجازت نہ شریعت اسلامیہ دیتی ہے اور نہ ہی عقل و انصاف اس کی تائید کرتے ہیں۔ آخری پوائنٹ ہے عام میدانوں میں عورتوں کے نکلنے کے نتائج۔ اللہ تعالیٰ کے عورتوں کو گھروں میں قرار پکڑنے کے حکم کی حکمت کے متعلق ایمان و ایقان میں مزید اضافہ اس بات سے ہوتا ہے کہ جن معاشروں میں عورتیں عام میدانوں میں مردوں کے ساتھ شریک ہوئیں وہاں فساد میں اضافہ ہوا، بے حیائی کا چلن ہوا اور خواتین کی عصمتوں کا لٹنا معمول کی بات قرار پاڑی۔ اس سلسلے میں چند ایک باتیں اعداد و شمار کے ساتھ اللہ کی توفیق سے پیش کی جا رہی ہیں۔ یعنی جب سے یہ انٹریکشن بڑھا ہے عورت مرد کا تو اس میں کیا ہوا؟ پہلی بات ہے بانچ پن کا عام ہونا۔ ایسے معاشرے میں عورتوں کو مردوں ایسے بننے اور بنانے کی دوڑ میں خود عورتوں نے یا وہاں کے مردوں نے یا دونوں ہی نے چاہا کہ خواتین کو بچوں کو جنم دینے کی مصیبت سے نجات مل جائے یا یہ مصیبت کم از کم ہو جائے۔ اس خواہش کی تکمیل کے کتنی ہی عورتیں بانچ ہونے کے لیے آپریشن کرواتی ہیں और इनकी कितनी बड़ी तादाद पेट ही में मौजूद बच्चों को ज़ाया करवा देती है। मशहूर रोज़नामा अखबार अशरकुल औसत ने ब्राज़ील के बारे में दर्जा ज़ैल खबर शाये की। ब्राज़ील का राइटर लिखता है कि औरतों के हकूक़ के मुतल्लिका तंजीमों ने जिक्र किया है कि ब्राज़ील में बच्चों को ज़ाया करवाने की खातिर ऑपरेशनों के दौरान 4 लाख से ज़्यादा औरतें मर जाती हैं और हज़ारों औरतें नौकरी के हसूल की गरज से बाँझ होने के लिए ऑपरेशन करवाती हैं। ज़ाहिर है कि बच्चों की जिम्मेदारियों के साथ तो ये सब कुछ नहीं हो पाता ना। ब्राज़ीली कांग्रेस के ज़ेर एहतमाम औरतों के हकूक़ के मुतल्लिक सेमिनार में हकूक़ निस्वां के बड़े बड़े इलमबरदारों ने बयान किया कि ब्राज़ील में बच्चों को ज़ाया कराने की खातिर 40 लाख सालाना ऑपरेशन किए जाते हैं। गुज़श्ता दिनों तंजीम रैदी ने कहा कि ब्राज़ीली औरतों की 44 यानी 44% तादाद बच्चों को जन्म देने की उम्र में बाँझ होने की गरज से ऑपरेशन करवाती है। यानी पहला पॉइंट क्या हुआ कि जब औरत को मर्द के मुकाबले में लाके खड़ा किया जाएगा तो फिर उसे कहा जाएगा कि आप बच्चे पैदा ना करें। दूसरा फैक्टर है जिंसी ज्यादती। इन माशरों में जिंसी ज्यादती रोज़मर्रा का मामूल बन चुका है। एक मगरबी लिखने वाली खातून लीन फॉरली ने तहरीर किया कि अमेरिका और यूरोप में जिंसी ज्यादती अपनी मुतअद्दद शक्लों में बहुत ही आम है। ज़िंदगी के किसी शोबे में भी मर्दों के साथ काम करने वाली औरत का इसका शिकार होना कुछ शाज़ो नादर या इस्तेसनाई बात नहीं बल्कि ये तो मामूल की बात है। बात भी समझ आती है। एक चीज़ अप्रोच में हो गई ना, रीच में हो गई तो फिर उससे नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया जा सकता है। जिंसी ज्यादती की चंद एक मिसालें। 1975 में जामिया कॉर्नल ने जिंसी ज्यादती के मुतल्लिक काम करने वाली औरतों की आरा को जमा किया। ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाली औरतों ने राय दही में हिस्सा लिया। इनमें से 70% ने बयान किया कि इन्हें इस किस्म की मुश्किलात और ज्यादती का सामना करना पड़ता है। इनमें से 56% ने बयान किया यानी 56% ने कि ये ज्यादतियाँ संगीन नौयत की थी। अब ये उनकी रिपोर्ट है, इसमें झूठ नहीं हो सकता, इसलिए कि उन्होंने कोई इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पेश की। ये तो ऐसे ही हर मुल्क के क्राइम पॉइंट्स वगैरह और जो चीज़ें होती हैं वो पेश की जाती हैं। दूसरी रिपोर्ट है जनवरी 1976 में रेड बुक मैगजीन ने एक रिपोर्ट शाया की जिसको काम करने वाली 9000 यानी 9000 औरतों के जवाब की रोशनी में तैयार किया गया। इनमें से 90% यानी 90% ने बयान किया कि वो अमली तौर पर जिंसी ज्यादती का शिकार हो चुकी हैं। तीसरी रिपोर्ट है अक़वामे मुत्तहिदा में काम करने वाली सेक्रेटरी ख़वातीन से जिंसी खबस का निशाना बनने के मुतालिक दरियाफ्त किया गया। इस सिलसिले में 875 यानी 875 औरतों के जवाबात जमा हो चुके तो ज़िम्मेदारान ने इस सिलसिले को बंद करवा दिया। जवाबात देने वाली ख़वातीन में से 50% ने बयान किया कि वो ज़ाती तौर पर छेड़छाड़ और जिंसी हवस का निशाना बन चुकी हैं। शोबा पुलिस में काम करने वाली 333 खवातीन में से 50% यानी 50% ने बयान किया कि वो अपने अफसराने बाला की जिंसी हवस का निशाना बन चुकी हैं। देखिए अगर पानी साथ होगा तो धुआं तो निकलेगा ना। रोज़नामा रियाज में इक़वामे मुत्तहिदा के मुतालिक दर्जा ज़ैल खबर शाया हुई। एक तकरीर में बताया गया कि जनीवा में इक़वामे मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर जनीवा में चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर को बस काम करने वाली औरतों से गैर अखलाकी छेड़छाड़ करने की बिना पर मुअत्तल कर दिया गया। अगर चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर के काम करने वाली औरतों से मामले की कैफियत ये थी तो बाकी मुलाजमीन और अफसरान बाला इन औरतों के साथ क्या मामला करते होंगे। यानी बड़े लेवल पे जो लोग होते हैं वो तो अमूमन इस तरह की बेहुदा हरकतें नहीं करते, तो अगर उनसे ये हो गया तो फिर छोटे लेवल पर तो काम इससे ज़्यादा भी ख़राब हो सकता है। तीसरा, औरतों के अगवा की वारदातें। पहला क्या था, बांझपन आम हुआ। दूसरा क्या था, जिंसी ज्यादतियाँ हुई। और तीसरा क्या कि औरतों के अगवा की वारदातें हुई। ऐसे माशरों में औरतों का अगवा रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। इस बारे में बास आदाद व शुमार और बयानात मौजूद हैं। नंबर एक अमेरिकन यानी अमरीकी इंसाइक्लोपीडिया में तहरीर किया गया, इन वेस्टर्न नेशन रेप हैज़ बीन द मोस्ट रेपिडली इंक्रीजिंग क्राइम। द थेरी दैट ग्रोइंग सेक्शुअल परमिसिवनेस would reduce occurrence of rape does not appear to be correct. क्या तर्जमा है, दीगर तमाम जराइम के मुकाबले में मगरबी अकवाम में औरतों के अगवा के जराइम में सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से इजाफा हुआ जिनसी अबाहियत की बिना पर, यानी इनको जायज़ करना। अगवा की वारदातों में कमी का नज़रिया सही साबित होता नज़र नहीं आ रहा। फिर अगवा नामी किताब में बयान किया गया, इन द यूनाइटेड स्टेट बिटवीन 1970 एंड 1982 रिपोर्ट्स ऑफ फोर्सेबल रेप मोर देन डबल फ्रॉम 378602 77763। यानी 37,000 कुछ से ये 77,000 कुछ पे पहुंच गया। रियासत हाय मुतहदा अमेरिका में 1982 में औरतों की वारदातों की रिपोर्टों में 1970 के मुकाबले में दुगना इजाफा हुआ। इनकी तादाद 37,860 से 77,763 हो गई। मज़कूरा वाला किताब में ये भी तहरीर किया गया कि द यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल क्राइम सर्वे ऑफ 1979 एस्टिमेटेड दैट ओनली 50% ऑफ फोर्सेबल रेप वर रिपोर्टेबल रिपोर्टेड टू पुलिस, यानी सिर्फ आधे दिए गए आधों का तो जिक्र ही नहीं हुआ। रियासत है मुतहदा अमेरिका की कौमी जायजा जराइम रिपोर्ट 1979 के मुताबिक अगवा के सिर्फ 50% हादसा की पुलिस को रिपोर्ट दी गई, तो 50% नहीं दी गई ये कह लें। नंबर 4, हम नंबर 1 हैं नामी किताब में तहरीर किया गया अ रिसेंट स्टडी फाइंड्स दैट 21% ऑफ अमेरिकन वुमेन सेज दैट दे हैव बीन रेप्ड सिंस एज 14। एक ताज़ा जायजा रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि 21% अमरीकी खवातीन ने बयान किया कि इन्हें 14 साल ही की उम्र में रेप किया गया। मस्कुरा वाला किताब में ये बात भी बयान की गई कि इन अनदर स्टडी मोर देन 1 in 8 वाइट यंग अमेरिकन वुमेन यानी 12.7% बनता है टोटल आबादी का सेज दैट दे वर रेप्ड बाय एज 20। एक दूसरी जायजा रिपोर्ट में है कि हर 8% सफ़ेद फाम अमरीकी खवातीन में से एक से ज़्यादा औरतों को 20 साल की उम्र में अगवा किया गया यानी 12.7% से ज़ायद खवातीन। सबका किताब में ये भी लिखा गया कि 1 in 17 से देवर रेप इन एज ऑफ 14 और यंगर। एक और रिपोर्ट में कि हर 17 में से एक खातून ने बताया कि इसको 14 साल या इससे भी छोटी उम्र में रेप किया गया। खवातीन एक जायजा नामी किताब में शाया किया गया अ स्टडी ऑफ 1236 लंडन वुमेन फॉर इंस्टेंस डिस्कवर्ड दैट 1 in 6 हैज़ बीन रेप्ड 1 in 5 हैड फॉट ऑफ एन अटेम्प्ट ऑफ रेप। लंदन की 1236 औरतों के मुतालिक जायजा रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि हर 6 में से एक खातून को अगवा किया गया और हर 5 में से एक औरत ने अगवा की वारदात से बचाव के लिए मुकाबला किया। तो ये आप देखिए कि फिगर्स एंड फैक्ट्स उन्हीं की किताबों के हैं, ये कोई हमारे आपके नहीं है। कोई वो हराम नहीं समझते इन चीज़ों को, इसके बावजूद उनके इतने फिगर्स हैं। तो इस्लाम में तो ऐसी चीज़ें वैसे ही मना है। फिर चौथा इफेक्ट क्या है कि कंवारी लड़कियों का हामिला होना और नाजायज़ बच्चे होना मगरबी माशरों में जहाँ खवातीन मर्दों के शाना बशाना काम की खातिर निकली वहाँ गैर शादीशुदा लड़कियों का हामिला होना और नाजायज़ बच्चों की कसरत मामूल की बात करार पाई। अमेरिकन मुसन्निफ की किताब हम नंबर 1 ही में बयान किया गया 1 in 10 अमेरिकन यंग वुमेन एज 15 to 19 1 in 5 हु आर सेक्शुअली एक्टिव बिकम प्रेग्नेंट ईच ईयर 15 से 19 साल की 10 अमेरिकन लड़कियों में से एक लड़की हर साल हामिला हो जाती है और हर 5 में से एक लड़की जिंसी ताल्लुकात कायम करती है। इसी किताब में ये भी बयान किया गया 2/3 of 10 एज मदर्स आर नॉट मैरिड नौजवान माओ में से 2/3 गैर शादीशुदा होती हैं, यानी अगर वहाँ 10 औरतें हैं तो उसमें से तकरीबन 7 गैर शादीशुदा माएँ हैं और 3 सिर्फ शादीशुदा हैं। इन माशरों में हमल को रोकने और बच्चों को पेट ही में ज़ाया करने की कोशिशों के बावजूद नाजायज़ बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है। सऊदी अरब से निकलने वाली अंग्रेज़ी अखबार अरब न्यूज़ में बरतानिया में बच्चों की पैदाइश के मुतालिक सरकारी अदाद व शुमार शाया किए गए। इन्हीं अदाद व शुमार में ये बात बयान की गई कि पैदा होने वाले 4 बच्चों में से एक बच्चा कुंबे से बाहर पैदा हो रहा है और इस तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, और अगर इन बच्चों की तादाद में इजाफे का तनासब यही रहा तो आइंदा चंद सालों में कोई बच्चा भी कुंबे के अंदर पैदा नहीं होगा, यानी आउट ऑफ फैमिली बच्चा है, किसी को नहीं पता वो किसका बच्चा है। अदाद व शुमार के निगरान ऑफिसर ने मज़ीद कहा इस इजाफे के बावजूद बरतानिया ताहाल स्वीडन के मुकाबले में पीछे है जहाँ कुंबे के बाहर पैदा होने वाले बच्चों का तनासब 50% है। और ये सूरत हाल हमल को रोकने और बच्चों को ज़ाया करने वाली सारी कोशिशों के बाद है। क्या इन सब के बाद भी कोई ईमान और हया और अक्लो हिरद वाला शख्स औरतों को ज़िंदगी के आम मैदानों में मर्दों के शाना बशाना काम करने की दावत दे सकता है? फातबिरु या उलिल अबसार पस इबरत पकड़ो ए आँखों वालों। तो ये चंद बातें थी फिगर एंड फैक्ट्स के नाते से, यहाँ पे ये टॉपिक भी पूरा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अब बस एक नशिस्त हमारी और है आगे। سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.